اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہم لیکچر نمبر 31 پڑھنے لگے ہیں. لیکچر نمبر 31 ہے پیج 264، 264 صفحے پہ. اس لیکچر میں چار شعوروں کی بات کی گئی ہے، اور یہ آپ چار کا ہنسا سن کے سمجھ ہی گئے ہیں کہ یہ چاروں شعوروں سے کیا مراد ہے. انہی چار باتوں کو ایک اور زاویے سے حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں. حواس کے دو رخ ہیں. حواس یعنی ہماری جتنی حسیات ہیں. حسیات کون سی ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا. ان تمام حواسوں کے دو رخ ہیں. ایک میں تغیر ہوتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے تغیر واقع ہوتا ہے اسی مناسبت سے رنگ پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ رنگوں کی وجہ سے میری حسیات میں تغیر ہو رہا ہے، حالانکہ روحانیت کیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے جیسے حواس میں تغیر ہوتا ہے اسی مناسبت سے رنگ پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں تغیر واقع نہیں ہوتا وہاں بے رنگی ہوتی ہے. حواس میں تغیر ورائے بے رنگ سے ہوتا ہے. اب یہ رنگینی، رنگ، یک رنگی اور پھر بے رنگی اور پھر اس کے بعد ورائے بے رنگ، تو یہ چار چیزیں ہو گئی. اور جیسے ہی ورائے بے رنگ میں تغیر پیدا ہوتا ہے ایک رنگینی پیدا ہوتی ہے جو بے رنگی کہلاتی ہے. بے رنگی میں تغیر ہوتا ہے تو حواس میں درجہ بدرجہ ایک رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت سارے رنگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کل رنگ بن جاتے ہیں، یعنی رنگینی بن جاتی ہے. اب آپ غور کریں کہ ایک دو تین جملوں میں وہ جو آپ نے مثال سنی کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ہمیں سب رنگ نظر آ رہے ہیں، یعنی رنگوں کی وجہ سے چیزیں دکھ رہی ہیں، یہ رنگ عالم میں رنگ و بو کہلا رہا ہے، یہ عالم میں ناسوت کہلا رہا ہے. اس سے اوپر یک رنگی یعنی وہ روشنی جس کی وجہ سے یہ سارے رنگ دکھ رہے ہیں وہ ہو گئی یک رنگی. اب اس روشنی کی اساس جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ کرنٹ ہے. اگر آپ کمرے میں رات کے وقت لائٹ لگاتے ہیں تو آج کل کرنٹ کی وجہ سے ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ کرنٹ میں کیا رنگ ہے. تو کرنٹ میں تو کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن بلب میں سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو وہ یک رنگی پیدا کر دیتا ہے. اب کرنٹ جو ہے اس کی اساس کیا ہے؟ تو کرنٹ بے رنگ ہوا تو بے رنگی کی اساس ورائے بے رنگ ہے، یعنی کہ وہ ذہن جس نے کرنٹ کا فلو کنٹرول کیا، کرنٹ کو جنریٹ کیا، جس نے اس کے لیے ٹرانسمیشن سارا سسٹم قائم کیا، اور وہ باقاعدہ گرڈ سٹیشن اور پھر ٹرانسفارمرز وغیرہ اور ایم ٹیز لگا کے آپ کے گھروں میں 220 وولٹ پہ لا کے اس کو سپلائی کر دیا، تو یہ ورائے بے رنگ وہ ذہن ہو گیا جس نے کرنٹ کو جنریٹ کیا، اور بے رنگی کرنٹ ہو گیا، پھر یک رنگی اس کی وجہ سے ہونے والی روشنی ہو گئی، اور پھر اس روشنی سے رنگینی. تو یہ چار درجے واضح ہو گئے. اب بے رنگی میں جب تغیر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ حواس میں ایک رنگ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت سارے رنگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کل رنگ بن جاتے ہیں. اب اسی بات کو کہاں کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہمے سے اس تغیر کی شروعات ہوتی ہے، یعنی ورائے بے رنگ اصل میں کیا ہے؟ وہمہ. اور یہ تغیر خیال اور تصور کی راہیں طے کر کے محسوسات کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہ چار چیزیں جس کو ورائے بے رنگ کہا وہ وہمہ ہے، جس کو بے رنگی کہا وہ خیال ہے، جس کو یک رنگی کہا وہ تصور ہے، اور جو رنگینی ہے وہ اصل میں محسوسات ہیں. تو خیال، تصور اور محسوسات یہ ایک دائرے میں سفر کرتے ہیں. جس طرح خیالات اور تصورات محسوسات بننے کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، تو اسی طرح یہ دوبارہ پلٹتے ہیں. اور یہ سلسلہ ازل تا ابد قائم ہے، یعنی ازل سے لے کر ابد تک یہی سلسلہ قائم ہے. خیال اور تصورات کا سفر کرنا زمانی اور مکانی فاصلوں کو متعین کرتا ہے. یعنی یہ زمانیت اور مکانیت اصل میں کیا، خیالات اور تصورات کے سفر کا نام ہے. یہ انتہائی خوبصورت ڈیفینیشن ہے اور انتہائی زبردست بات ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹائم اینڈ سپیس ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ خیالات اور تصورات کو سمجھنا ہے. یعنی خیال اور تصورات کا سفر کرنا زمانی اور مکانی فاصلوں کو متعین کر دیتا ہے. خیال، تصور اور احساس جن مراحل سے گزر کر کسی مقام پر قائم ہوتے ہیں، اس مقام کو سمجھنے اور اس مقام کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں تین شعوروں سے گزرنا پڑتا ہے. اب یہ چاروں چیزیں اصل میں چار شعور ہیں. تو یہ جب خیال، تصور اور احساس کی بات ہو رہی ہے، تو احساس کا شعور الگ ہے، تصور کا شعور الگ ہے، اور وہ خیال کا شعور بالکل الگ ہے. اور ان تینوں شعوروں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ہم جب تین شعوروں سے گزر کر جس مقام پر، غیر متغیر مقام کو دیکھتے ہیں، اس مقام کو ہم نے لا شعور کا نام دے دیا. یعنی ہم نے کہہ دیا کہ یہاں شعور ہے ہی نہیں، وہ چیز جو شعور نہیں ہے. تو نو انسانی اب تک جس شعور سے واقف ہے، وہ شعور چہارم کے ضمن میں آتا ہے. اب باقی تین شعور یا تین لا شعور، ہمیں وحی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک شعور کو چھوڑ کر باقی تین شعوروں کو سمجھ لیا جائے تو ہم وحی سے واقف ہو سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا، ایک جملے میں بتا دیا کہ وحی سے واقفیت کی کیا طریقہ ہے، کہ آپ کو شعور چہارم سے اوپر اٹھ کر شعور سوئم، شعور دوئم اور شعور اول کا ادراک حاصل کرنا ہے. یہ ہے اس کا سارا نظام. تو ہم وہی سے واقف ہو سکتے ہیں. مفکرین کو اگر فی الواقعہ کائنات کی حقیقت تک پہنچنا ہے، تو انہیں کسی نہ کسی طرح اس نظریے پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ یہ محسوساتی کائنات ہرگز مادی ذرات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ شعور کا عکس ہے. اب یہاں پہ ایک لفظ ہے مفکرین. مفکر کہتے ہیں فکر کرنے والے کو. اب اگر ہم اسے عام سطح پہ دیکھیں تو ہم ماشاءاللہ ساری اپنی فکر مندیوں کی وجہ سے مفکرین ہی تو ہیں. ہر وقت فکر ہی کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے تو کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ بات نہیں ہے، یہ لائٹر ٹون میں اگر آپ نے بات کو ذرا غور کریں تو ہر انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے. تو غور و فکر کی یہ صلاحیت کی وجہ سے آپ مفکر ہیں. تو فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم کہ یہ بات ہمیں طے کرنی ہوگی، ماننا ہوگا، کسی نہ کسی طرح اس نظریے پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ یہ جو محسوساتی کائنات ہے، یہ مادی ذرات کا مجموعہ نہیں ہے. یہ کوئی جیسا کہ آپ کی فزیکل سائنسز جو ہیں ان کا کنکلوژن یہ ہے، یا وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہاں ہر چیز میٹر جو ہے وہ ننھے ننھے پارٹیکل سے بنی ہے. پہلے انہوں نے اس کا ایٹم نام رکھا، پھر اس کو سب اٹامک پارٹیکلز کہا، پھر اب وہ کوارکس اور اس طرح کی چیزوں کے نام لے رہے ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے در حقیقت شعور کا عکس ہے. और आगे शऊर के चार दर्जे बता दिए। अब देखिए वही पीछे सारी बातें जो हमने पढ़ी हुई हैं, अब उन्हीं की रिविजन हो रही है कि पहले शऊर का नाम नूरे मुफरद है, दूसरे शऊर का नाम नूरे मुरक्कब है, अब तीसरे शऊर का नाम नस्मा मुफरद है, और चौथे शऊर का नाम नस्मा मुरक्कब है। इन्हीं चार शऊरों में से नस्मा मुरक्कब जो है इससे अवाम मुतारिफ है, या ये नस्मा मुरक्कब का शऊर अवाम के तारुफ में, अवाम सिर्फ इसी शऊर यानी नस्मा मुरक्कब के हवास को जानते और समझते हैं, यानी रंगीनियों को जानते हैं। बकिया तीन शऊर आम्मा तो नास के तारुफ से बाहर हैं, यानी यकरंगी बेरंगी और वराय बेरंग उनकी समझ में नहीं आते। तो अगर वो ये समझ लें तो जाहिर है कि वो आम्मा तो नास नहीं रहेंगे, वो खास वो खवास बन जाएंगे। अब तक माहरीन नफ्सियात ने जिस चीज का सुराग लगाया है वो शऊर स्वयं है, जिसको नस्म मुफरद का सुराग लगाया है, और इसी शऊर सोम या नस्म मुफरद को साइंसदान हजरात ला शऊर का नाम देते हैं। जब हम कायनात की साख्त में तफक्कुर करते हैं तो हम देखते हैं कि कायनात की साख्त में असल में क्या है कि एक शऊर और तीन लाशऊर पाए जाते हैं। अब उसका जरा एक दफा फिर रिवाइज कर लीजिए कि पहला शऊर जो है इसी को शऊर अव्वल कहा है, और यही असल में नूर मुफरद है, और यही नौए आदम की, ये बनी नौ आदम की या इंसान की या इंसानियत का टारगेट है और होना चाहिए। दूसरा शऊर शऊर दोयम है, ये नूर मुरक्कब है। तीसरा शऊर जो है ये शऊर स्वयं ये नस्मा मुफरद है। चौथा शऊर शऊर चहारम जो है ये नस्मा मुरक्कब है। इसमें एक इजाफी बात ये सुन रखें कि चौथा शऊर ये नस्मा मुरक्कब जो है ये इंसान और इंसान की दुनिया है, मादी दुनिया यानी ठोस दुनिया। तीसरा शऊर नस्मा मुफरद जो है ये असल में जिन और जिन्नात की दुनिया। दूसरा शऊर जो है जिसे शऊर दोम कहा, ये नूर मुरक्कब है, ये मलाए आला और मलाइका की दुनिया यानी फरिश्तों की दुनिया। और फिर इससे ऊपर जो है वो नूर मुफरद है, और नूर मुफरद का मतलब हो गया अल्लाह का जहन या अल्लाह की सिफात। यहां तक हमने क्या पढ़ा कि चार चीजें हैं, इन्हीं को चार शऊर का है, इन्हीं को रंग रंगीनी बेरंगी सॉरी यकरंगी बेरंगी और वराय बेरंग का है, इन्हीं को शऊर अव्वल शऊर दोयम शऊर स्वयं शऊर चहारम का है, और इन्हीं का नाम नूर मुफरद नूर मुरक्कब नूर नस्मा मुफरद और नस्मा मुरक्कब है। ये चार शऊरों का एक अजमाली सा तारुफ कराकर ये जहन नशीन करा दिया कि ये चारों असल में जिनका तस्करा मुख्तलिफ नामों से किया जाता है ये असल में एक ही बात है। जैसे अब इन्हीं चार शऊरों के नाम चार नहरें भी लिया जाता है, और फिर इन्हीं चार शऊरों के नामों में से एक नाम है नजर नजारा नाजर और मंजूर, और एक नाम है शहूद मुशाहिदा शाहिद और मशहूद, और फिर एक और नाम जो हमने पढ़ा था वो था राह रूह रोया और रोयत, और फिर इन्हीं के चार के नाम हैं नहरे तजरीद नहरे तस्वीद नहरे तजरीद नहरे तशहीद और नहरे तजहीर। तो ये चार बातों को इस तरह से मुख्तलिफ नामों से जहन नशीन करा दिया ताकि हमारा शऊर जो है, और यह भी बता दिया कि यह असल में शऊर है। अब इससे अगला पाठ जो है वो हकीकत मुहम्मदी के है, यानी कि हजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुई, वो मुकाम महमूद तक पहुंचे, तो जिन हकायक से वो वहां आशना हुए वो हकायक हजूर अलैहिस्सलाम के बाबरकत नाम की निस्बत से हकीकत मुहम्मदी कहलाए या हकीकत मुहम्मदिया कहलाए। तो जब हम जिंदगी का कोई भी अमल करते हैं, पहले उस अमल से मुतालिक हमारे ऊपर तीन हालतें तारी होती हैं। वहमा से कोई अमल शुरू होता है, वहमा एक इत्तला है, कोई शक को शुबा रह गया कि वहमा क्या है, इत्तला इंफॉर्मेशन की असल शक्ल का नाम है वहमा। वहमा एक इत्तला है, ऐसी इत्तला जिसको हम उस वक्त ख्याल कहते हैं जिस वक्त इत्तला में गहराई पैदा होती है, यानी जब वो हमारे जहन पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये इत्तला दिमाग के ऊपर दबाव बनकर नजूल करती है। इत्तला में दबाव और फिर ठहराव पैदा होता है, सिर्फ दबाव पैदा और ठहराव ना तो वो पासिंग थॉट कहलाता है। अब इस इत्तला को ख्याल भी कहते हैं, लेकिन ये इत्तला जो ख्याल बन गई है उसमें खदो खाल नहीं होते, या दिमाग में खदो खाल का एहसास नहीं उभरता। यानी अब ये बात इसलिए दोबारा जुमले को ठीक करके कहा कि ख्याल के अंदर खदो खाल होते हैं लेकिन दिमाग में उनका एहसास नहीं उभरता। और जब ख्याल में गहराई पैदा होती है तो इस अमल से मुताल्लिक खदो खाल पैदा हो जाते हैं, यानी उसे तला से मुतालिक उसके अंदर खदो खाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही खदो खाल पैदा होते हैं तो ख्याल का नाम तसव्वुर बन जाता है। जब तसव्वुर गहरा होता है तो वो अमल जो वहमे से शुरू हुआ था एहसास बनकर सामने आ जाता है। यानी तसव्वुर क्या हुआ, तो वो अमल जो वहमे से शुरू हुआ वो ख्याल बना और ख्याल से तसव्वुर बना और तसव्वुर से वो एहसास बन गया। अब ये सारी हालत ऊपर से नीचे को आ रही है, लिहाजा ये हालत नजूली है, यानी गैब की दुनिया से एक इत्तला आ रही है। अब गैब किसे कहते हैं, वो चीज जो हमारे सामने नहीं है, हमारी जाहिरी आंखों के सामने नहीं है। तो गैब की दुनिया से एक इत्तला आती है। अब गैब नहीं का गैब की दुनिया, यानी वहां पूरी चीजें आबाद हैं, तो गैब की दुनिया से एक इत्तला आती है और एहसास की सूरत में जलवा गर होती है। फिर यही एहसास वापस तसव्वुर और ख्याल बनकर सऊदी हालत में लौट जाता है। ये एक साइकिल बन गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, कि हर चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है क्योंकि अल्लाह गैब है। तो गैब से आने वाली इत्तला जो है वो उसको अगर हम अल्लाह से मंसूब करेंगे तो अपना ही भला करेंगे। तो वो इत्तला जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, गैब से आ रही है, वो वहमा बनती है। वहमा एक इत्तला के दबाव का नाम है। वहां से वो ख्याल बना, ख्याल से यानी जब जहन उसकी तरफ मतवज्जो हो गया और उसने उस ख्याल को वसूल कर लिया तो वो ख्याल कहलाया। उसमें उस इत्तला के अंदर के भी खदो खाल से वो आशना नहीं हुआ। जब वो खदो खाल से वाकिफ होता है, उस पर रुकता है, ठहरता है, उसका इदराक उसको हासिल हो जाता है, तो वो खदो खाल जो है वो तसव्वुर बन जाते, एक तस्वीर उभरने लगती है। फिर वो तस्वीर में जब मजीद गहराई पैदा होती है तो वो पूरा एक प्रोसेस अर्ज किया था कि किस तरह जहन के इस कारकर्दगी से यानी एहसास से दिमाग में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से वो केमिकल इम्पल्सिस और केमिकल इम्पल्सिस जो हैं वो मोटर इम्पल्सिस में ट्रांसलेट हो जाती हैं और एक अमल सामने आ जाता है। और यहां से फिर वो वापस रिकॉर्ड होता चला जाता है और ये रिकॉर्ड अब सऊदी हालत कहलाता है। तो इंसान कैफियात और वारदात को जिस तरह महसूस करके जानता है और जो चीज उसे किसी इल्म के बारे में इत्तलात फराहम करती है उसका नाम शऊर है। यानी इंसान कैफियात और वारदात यानी जो भी उसके फीलिंग्स होते हैं उनको किस तरह महसूस करता है और किस तरह जानता है और फिर वो चीज जो उसे किसी इल्म के बारे में इत्तलात फराहम कर रही है वो क्या है, तो उस चीज का नाम है शऊर। माहिरीन नफ्सियात ने जब शऊर की गहराई में तफक्कुर किया तो उनके ऊपर ये बात मुनकशिफ हुई कि शऊर एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इत्तलात को कबूल करके इंसान के अंदर मानी और मफहूम पहनाता है। यानी इत्तला को मीनिंग्स देने का काम शऊर के जिम्मे है। यहां से शऊर अलग हो गया, वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास को जो चीज हैंडल कर रही है वो इंस्ट्रूमेंट, वो मशीन जो उसको मीनिंग्स पहना रही है वो शऊर कहला रही है। साथ ही साथ उसके सामने ये बात आई कि इत्तलात जो मानी और मफहूम बनकर ख्यालात बन रही हैं, यकीनन उनका कोई सोर्स है, यानी कहीं ना कहीं से तो आई है ना। तो इत्तलात कहीं से आ रही हैं और इत्तलात जहां से आ रही हैं उसका नाम माहिरीन नफ्सियात ने लाशऊर रख दिया। यानी जिस शऊर से हम वाकिफ हैं उस शऊर के अलावा एक और शऊर है और वो शऊर शऊरी कैफियात के बरक्स है। माहिरीन रूहानियत, अब ये माहिरीन नफ्सियात का एजाविया निगाह बता दिया कि वो तो सिर्फ एक शऊर को जानते हैं और एक लाशऊर को जानते हैं, लेकिन माहरीने रूहानियत जब शऊर का तस्करा करते हैं तो वह एक शऊर का तस्करा नहीं करते बल्कि चार शऊरों का तस्करा करते हैं। और माहरीने रूहानियत कायनात को चार शऊरों का मुरक्कब बताते हैं, यानी सारी कायनात चार शऊरों पर तख्लीक की गई है और चार शऊरों पर तमाम हरकात और सकनात कायम हैं। अब देखें ना ये फर्क, पहले सूफिया कराम जब इन बातों का तस्करा करते थे तो वो कहते थे कि पूरी कायनात को चार नहरें फीड कर रही हैं, लेकिन अब जो है वो इस मॉडर्न दौर में हजूर कलंदर बाब औलिया ने और हजूर मुर्शिद करीम ने क्या किया के बता दिया कि ये चार नहरें कह के आप खामखा अपने आप को किसी ख्याली दुनिया में ना बसाएं बल्कि ये चार शऊर हैं, चार दर्जे हैं शऊर के और ये सारी हरकतो सकनात इन्हीं चार शऊरों पर कायम हैं। अब नौ इंसानी आम तौर पर एक शऊर से वाकिफ है और नौ इंसानी में वो हजरात जो तफक्कुर करते हैं दानिश्वरों में जो आमा तो नास से हटकर इल्मी हैसियत में अपना एक तारुफ रखते हैं उनके नजदीक कायनाती जिंदगी या इंसानी जिंदगी दो शऊरों से मुरक्कब है। तो इसका मतलब यह है कि आमा तो नास सिर्फ एक शऊर से वाकिफ हैं और बाकी तीन शऊरों से वाकिफ नहीं है। हम जब कुरान पाक और आसमानी किताबों में तफक्कुर करते हैं तो हमें यह इल्म हासिल होता है कि कुरान दो शऊरों के अलावा मजीद दो शऊरों का तारुफ करवाता है। कुरान के बयान करदा दो शऊर भी लाशऊर के दायरे में आते हैं। शऊर की तारीफ में यह बात कही जाती है कि कोई चीज विजन बनकर सामने आए, उस चीज और हमारे दरमियान फासला हो तो वो चीज ठोस हो, उसमें कशिश सकल हो, तो उसको हम मादी आंख से देख सकते हैं और मादी जिस्म से छू सकते हैं। ये बात जो है कि ये शऊर की तारीफ में कही जा रही है। शऊर इस जोन में काम करता है कि कोई चीज विजन बनकर सामने आए, विजन का मतलब है कोई तस्वीरी सूरत हो, फिर उसके और हमारे दरमियान फासला हो, क्योंकि कानून पढ़ा था आपने के फासले के बगैर हम चीज नहीं देख सकते। फिर तीसरी बात ये फरमाई कि वो ठोस हो, उसमें कशिश सकल हो, और फिर ये कि हम उसे मादी आंख से देख सकते हैं और उसके मादी जिस्म को छू सकते हैं। हम जानते हैं कि जिस चीज से हम पहले मुतारिफ होते हैं उस चीज से मुतालिक हमारे जहन में एक वहमा पैदा होता है, फिर यही वहमा ख्याल बनता है, ख्याल में गहराई के बाद एक तसव्वुराती सूरत उभरती है, और यही तसव्वुराती सूरत एहसास का दर्जा हासिल कर लेती है। वहमा से एहसास तक पहुंचने के लिए या किसी चीज को वहमा से एहसास के अंदर देखने के लिए रूहानी कानून के मुताबिक सारा अमल एक सेकंड के हजारवें हिस्से में वाक्या होता है। अब हम पढ़ तो इसको आराम आराम से रहे हैं, लेकिन ये अमल सारे का सारा वहमे से एहसास बनने तक और उसके मोटर इंपल्स बनने तक एक सेकंड के हजारवें हिस्से में हो जाता है। और ये अमल मतवातर और बार बार खुद को दोहराता रहता है। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में वाकया होने वाली रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो चीज हमें साकित महसूस होती है, और जो चीज हम अपने सामने देख रहे हैं वो चीज वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास का दर्जा हासिल करके नजरों के सामने आती है। यानी ये सारा प्रोसेस इतनी रफ्तार से होता है कि हम उस रफ्तार को महसूस ही नहीं करते, इसलिए हमारे लिए ये चीज मौजूद ही नहीं है। जिस तरह वो नजरों के सामने आती है उसी तरह नजरों से गायब होकर फिर मुख्तलिफ दायरों से गुजरकर वहमा बन जाती है। वहमा ख्याल तसव्वुर ये तीन कैफियात हैं, तीन कैफियात हैं, और ये तीन कैफियात जिस तरह नजूल करती हैं उसी तरह सऊद करती हैं। नजूल और सऊद की फिर ये हरकत जो हैं ये असल में छह दायरों में तकसीम हो जाती हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया, दो शऊर, फिर चार शऊर, फिर उसको अब छह की बात आ गई, पांच हवास का तस्करा आ गया। तो ये छह दायरों में तकसीम होना जो है ये अब छह का तस्करा यानी तनजलात, ये तीन दायरे नीचे नजूल के आगे और एक तीन दायरे ऊपर सऊद के आगे। मफहूम ये हुआ कि इंसान चार शऊरों और छह दायरों में तकसीम है, और कोई इंसान जब कायनात में अपनी हकीकत को समझना चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो सऊद और नजूल के छह दायरों से वाकिफ हो। इसी को छह दायरों को ही सित्ताते अय्याम का है कुरान ने। तो नजूल और छह दायरों से वाकिफ होने के लिए जरूरी है कि वो जानता हो कि इंसान की तखलीक चार शऊरों पर कायम है। जिस तरह एक इंसान की तखलीक चार शऊरों से मुरक्कब है, इसी तरह सारी कायनात की तखलीक चार शऊरों पर कायम है। तीन लाख शऊरों से गुजर कर जब आदमी चौथे शऊर में दाखिल होता है तो इस हालत को रोयत कहते हैं। यही वो हालत है जिससे आम इंसान मुतारिफ है। रोयत मैंने अर्ज किया था कि ये मादी आंख से देखने को रोयत कहते हैं, और यही वो हालत है जिससे आम इंसान मुतारिफ है। रोयत का शऊर बाकी तीन लाशऊरों का मजमुआ है, यानी उसका बाई एंड प्रोडक्ट है। हम अव्वल वराए कायनाती शऊर से जो गैर मुतगैर है अपनी हयात की इब्तदा करते हैं। अब वराए कायनाती शऊर जो गैर मुतगैर है इसी को शऊर अव्वल कहा, इसी को वामा कहा। ये वराय कायनाती शऊर दरअसल सिफात इलाहिया में ये वराय कायनाती शऊर दरअसल सिफात इलाहिया में तूफानी कैफियत है। ये है असल राज कि जो वराय कायनाती शऊर है ये असल में क्या चीज है, ये अल्लाह की सिफात में एक उबाल पैदा हो रहा है, एक तूफानी कैफियत पैदा हो गई, वो अपने इजहार पे आमादा हो गई। तो उसकी मिसाल है सिफात इलाहिया में एक फवारा फूटता है और यही फवारा नजूल करके तीसरे कदम पर फर्द बन जाता है। पहले कदम पर फवारे का हेओला कायनात की शक्ल में होता है, यानी पहले कदम पर सारी कायनात एक नुक्ते में नजर आती है, दूसरे कदम पर वो किसी एक नौ का हेओला बन जाती है, और फिर तीसरे कदम पर वो फर्द बनकर रूनमा हो जाता है। वो चार बातें कि फर्द, नौ, कायनात और वराए कायनात, वही चार चीजें। अब उनके ये चार नाम ये भी बता दिए। फर्द के अंदर जो सिफात और कैफियात और लाशुमार रंग हैं, इन रंगों में हरकत पैदा होती है तो रंगों का फवारा उबलता है और यही फवारा हमें एहसास से रूशनास करता है। लेकिन क्योंकि ये फवारा लाशुमार रंगों की तरतीब से निकलता है, इसलिए फवारे के अंदर उबलने वाले रंगों में तरतीब कायम रखना या रंगों का सही एहसास के साथ महसूस करना तकरीबन महाल है। यही वजह है कि जब हम शौरे चहारम के हवास में जिंदगी बसर करते हैं तो हमसे गलतियां सरजद होती हैं। ये गलतियों का जोन है शौरे चहारम। इन रंगों से उबलने वाले फव्वारे को महसूस करने के लिए चूंकि कयास से काम लेना पड़ता है, उन गलतियों पे काबू पाने के लिए फिर हम कयास से काम लेते हैं, इसलिए जो कुछ देखते हैं उसे मफरूजा हवास की दुनिया कहा जाता है। चूंकि शौरे चहारम मफरूजा और कयास पर मबनी होता है, इसलिए रूहानी अलूम में शौरे चहारम पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ना किया जाता है। शौरे चहारम में जो कुछ नजर आता है उसे रूहानी लोग मफरूजा करार देते हैं, क्योंकि वो एक एंड प्रोडक्ट को देख रहे हैं। वो प्रोडक्ट बनी कैसे है, कोई भी चीज जाहिर है कि वो हमें महसूस हो रही है तो उसके पीछे तसव्वुर है, उसके ऊपर ख्याल है, उससे ऊपर वराए ख्याल यानी वाहमा भी है। तो अगर कोई बंदा इन चारों दर्जों से वाकिफ नहीं है, वो चीज को, उसकी हकीकत को नहीं देख रहा, वो तो एक मफरूजा चीज को देख रहा है। रूहानियत में एतमाद का सबसे अहम जरिया शौर अव्वल है, क्योंकि शौर अव्वल में मशीयत इलाही का इंकशाफ होता है और मशीयत इलाही के इंकशाफ में किसी गलती का इम्कान नहीं होता। मशीयत इलाही जिस शऊर में बेनकाब होती है उस शऊर को हकीकतुल हकायक कहते हैं। हकायक की हकीकत, हकीकतुल हकायक यानी एक चीज मफरूजा है, फिर वो उसकी हकीकत है, फिर वो उस हकीकतों का मजमुआ हकायक करा पाया, फिर उन तमाम हकायक की असल हकीकत का नाम है हकीकतुल हकायक, और इसी शऊर को फिर हकीकत मुहम्मदिया भी कहते हैं। कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में हजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए उन सब ने दो शऊरों से मुतारिफ कराया। हज़रत ईसा की तालीमात शौरे दोम से शुरू हुई और शौरे सोम तक उनकी तालीमात का फैलाव रहा। ये हज़रत ईसा जो थे इनका, इनकी तालीमात शौरे दोम तक की रसाई देती थी। शौरे अव्वल सबसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की सफ में हजूर अलैहिस्सलाम मुतारिफ हुए और इसी बायस कुरानी मुतसफ्फिफीन, मुतसफ्फिफीन یعنی تصوف قرآن کے حوالے سے تصوف والے وہ حضرات جو قرآن کے علوم کے عارف ہیں اس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں, اور قرآن پاک میں ہی شعور اول کو علم القلم کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے. یہ آپ کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کل چار شعور ہیں, انہی کے چار کے کئی نام ہیں, اور شعور اول جو ہے سب سے اوپر کا درجہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعارف کرایا. لہذا ہماری اصل وراثت یہ ہے کہ ہم کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کی سنت پہ عمل پیرا ہو کر اپنے ذہن کی اس سطح تک پہنچ جائیں جس کو حقیقت محمدیہ کہا گیا ہے. یہ ہے سارے پروگرام کا لبے لباب اور خلاصہ کلام. تو آج کا چیپٹر یہاں مکمل ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اس میں ایک وہ جو 265 نمبر پہ ایک چارٹ ہے وہ آپ خود دیکھ لیں گے تو اب آپ کو انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گا, ورنہ کل ہم انشاءاللہ اس کو وہاں سے بات شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے جی.